ग्रुप नंबर 5 सभी बाप के साथ और हाथ का अनुभव सदा करते हो। सदा साथ अर्थात हर कदम में बाप की मदद का सहज अनुभव होता रहे। जैसे बच्चे को बाप या माँ का साथ होता है तो वो किसी कितना सहज आगे बढ़ता रहता है, तो ऐसे साथ का अनुभव होता है, सदा होता है या कभी कभी होता है? समटाइम मतलब कभी कभी समाप्त हुआ या अभी भी समटाइम है? शायद बाबा विदेशियों से बात कर रहे हैं। बाबा का साथ सहज बनाता है और बाप का साथ सहज बनाता है, और बाप का साथ नहीं है, बाप से किनारा है तो मुश्किल। तो बाप बच्चों को इस समय साथ रहने की ऑफर करते हैं। तो जब बाप ऑफर करते हैं तो इस ऑफर को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। 63 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप में पुकारते रहे, अभी बाप मिला है तो सदा साथ का अनुभव करो। तो क्या सुना? बाबा कह रहे हैं सभी बाप के साथ और हाथ का अनुभव सदा करते हो। सदा साथ अर्थात हर कदम में बाप की मदद का सहज अनुभव। उदाहरण दिया, जैसे बच्चे को बाप या माँ के साथ होता है तो कितना सहज आगे बढ़ता रहता है, तो ऐसे साथ का अनुभव होता है। कोई साथ होता है तो क्या होता है? घोर जंगल से हम गुजर रहे, एक है अकेला जाना, एक है कोई साथ है। अगर कोई साथ है तो क्या हो जाता है? निडर, भय समाप्त और निश्चिंत और सेफ्टी, सुरक्षा का अनुभव होता है। चाहे छोटा बच्चा भी साथ में हो, पर यदि दो लोग हैं तो
बच्चे में जोश आ जाएगा।
और क्या होगा? किसी जंगल में हम अकेले जाना और दो लोग साथ में जाना,
जंगल का मजा लेगा वो, दो के साथ होगा।
दो के साथ जाएंगे तो मनोरंजन होगा, एक दूसरा कारण मस्ती में मनोरंजन में एंजॉय करते करते और एनकरेजमेंट एंथुसियाज्म उमंग उत्साह भी बना रहेगा और
आया इसी में
वो तो है। और जंगल में डाकू होते हैं, चोर होते हैं, कोई अकेला आदमी है और दो लोग हैं तो अकेले पर जल्दी आक्रमण किया जा सकता है। दो होंगे तो सोचेंगे आक्रमण करने से पहले। कोई जंगली जानवर भी अगर है तो अकेला है तो आक्रमण होता है, अगर दो लोग हैं तो मुश्किल है। तो यहाँ बाबा ये उदाहरण माया के लिए कहते हैं ना, अगर अकेले हो गए तो माया वार करेगी, अगर दो है तो माया भी सोचेगी पहले, और साथ है तो और क्या क्या हो जाएगा? और भी कुछ होगा?
खुश रहेंगे,
निश्चिंत रहेंगे, वो बोल दिया। और भी कुछ होगा? साथ चल रहे हैं दो लोग,
11
बजे दो और दो 11 तो बाबा कह रहे सभी साथ बाप के साथ और हाथ का अनुभव, शब्द है अनुभव, बहुत ऊंचा शब्द है। अनुभव होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं चल रहा हूँ, बाबा सदैव मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, आनंद मौज में चल रहे, मस्ती से चल रहे, निश्चिंत होकर चल रहे, निर्भय होकर चल रहे। अगर कोई वार कर भी दे तो एक तो वार करेगा नहीं, ना तो जानवर ना तो कोई चोर या डाकू, अगर वार कर दे तो भी जीत हमारी होगी, क्योंकि हम दो है, एक से ज्यादा है, और लड़ाई करने की हम में हिम्मत भी होगी। अगर अकेला वार करे और दो तीन मिलकर वार करे तो जोश भी होता है ना युद्ध करने का, लड़ाई करने का। तो बाबा कहते ये जो साथ है सदा होना चाहिए, सम टाइम नहीं, सदार्थात सदा निरंतर हर निश पल पल प्रतिपल दिन रात। तो बाबा कहते हैं 63 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप में पुकारते रहे, अभी बाबा मिला है तो सदा साथ का अनुभव करो। यह अनुभव और किसी युग में नहीं होगा, यह अनुभव पूरे 5000 साल में केवल अभी। इसके लिए बाबा ने संडे भी कहा था ना, यह अनुभव को सामने रखो, खजानों को सामने रखो और देखो कि क्या क्या अनुभव नहीं हुए, जो अनुभव नहीं हुए उनको अनुभव करो, क्योंकि यही समय अनुभव करने का। 84 जन्मों में 5000 साल में यह अनुभव फिर नहीं होगा। भगवान के साथ का सतयुग त्रेता में देवताओं का साथ, द्वापर कलयुग में मनुष्यों का साथ, और अभी सदा साथ भगवान स्वयं है, बंधा विजय का सहरा है, गीत है ना, जिसको देखो वही कहता। तो जब बाप ऑफर करते हैं तो इस ऑफर को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। बाबा ऑफर कर रहे हैं, बाप बच्चों को इस समय साथ रहने की ऑफर करते हैं। क्या कहते हैं, मुझे ले लो साथ में, अकेले मत जाओ, कि मार्ग कठिन मार्ग है, जंगल घना जंगल, डाकू चोर, दुर्गम चोटी पर पहुंचना है इस जंगल से गुजरते हुए, बिहड़ जंगल, बियाबान जंगल, अलग अलग नाम है, बड़ा घना जंगल है ये, सन्नाटा, डर है, डरावनी आवाज आती है बीच बीच में, पता नहीं चलता है कहां से आ रही है, पर डर रहता है और भयभीत होती है आत्मा। तो यहाँ कोई तो शक्तिशाली साथ चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों को इस समय सदा साथ रहने की ऑफर करते हैं, ऑफर दे रहा है वो कि ले लो मुझे साथ। आप सबका ब्रह्मा बाप से कितना प्यार है, बाबा पूछ रहे। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो किससे प्यार होना चाहिए? ब्रह्मा बाप से प्यार तो मुरली से प्यार, ब्रह्मा बाप से प्यार तो प्यार प्यार किससे रहना चाहिए? बाप की श्रीमत से प्यार। अच्छा, बाप ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाप को जिससे प्यार था उससे हमारा प्यार हो,
उसको
बाप से प्यार है उसको। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात किससे प्यार?
सेवा
से, मुरली से, और
गुणों से,
विशेषता से। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्राह्मण कल्चर से भी तो प्यार है। ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण कल्चर, ये प्रभु परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। ये परिवार भी फिर नहीं मिलेगा, यहाँ भगवान मिला साथ साथ परिवार भी मिल गया, दो चीजें हो गई। परिवार तो हमने मांगा नहीं था, भक्ति में क्या मांगा था? भगवान को परिवार मांगा था डॉक्टर मुरली सर? भक्ति में बाबा को बच्चे उलाना देते, बाबा हमने ये परिवार तो मांगा ही नहीं था, हमने आपको मांगा था आप जब आओगे तो हम आपके बन जाएंगे, आप आ जाओ, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गॉडफादर, आओ। पर वो आया तो ये परिवार कहाँ से आ गया, सारे हिसाब किताब चुक तू करने रूंग में एक्स्ट्रा मिल गया है। सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है अनुभव की, अनुभव की दृष्टि सबसे श्रेष्ठ है। अनुभव के नेत्र से जो देखते हैं वे कभी भी किसी के कहने से हलचल में नहीं आ सकते। देखा हुआ फिर भी सोचना पड़ता है, पता नहीं ठीक देखा नहीं देखा, देखा तो है पर पता नहीं दूर था, आंखों का नंबर जरा आ गया था इसके लिए दिखा नहीं ठीक से, परंतु अनुभव की आंख, अनुभव की आंख, आई ऑफ एक्सपीरियंस से देखने अनुभव करने वाली चीज सदा ही यथार्थ होती है। सभी ने अनुभव तो किया है ना, अगर 1,00,000 आत्माएं आपको कह दे कि ब्रह्मा बाप को देखा नहीं आपने तो क्या कहेंगे? कहेंगे देखा है, मन की आंखों से देखा है। मन की आंखों से देखना 100 गुना ज्यादा देखना है, इसमें कोई आपको हटा नहीं सकता। बाबा क्या कह रहे हैं, आप सबका ब्रह्मा बाप से कितना प्यार है, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्राह्मण कल्चर से भी प्यार, ब्रह्मा बाप से प्यार तो मुरली से प्यार, ब्रह्मा बाप से प्यार तो श्रीमत से प्यार, ब्राह्मण दिनचर्या से प्यार, ब्राह्मण कल्चर रीति रस्म रिवाज परंपरा मर्यादा है, यज्ञ से प्यार, जैसे वो यज्ञ रक्षक था हम भी यज्ञ रक्षक है, उसको जिस जिस से प्यार उसके गुणों से प्यार, वो जो जो करता था उस करने से प्यार, जैसा वो बोलता था उस बोल से प्यार। तो सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है अनुभव की, अध्यात्म में सबसे ऊंची बात है अनुभव,
फॉलो करने
की। चाहे किसी ने कितने ही शास्त्र पढ़े हो, कितनी ही किताबें पढ़ रखी हो, परंतु यदि अनुभव नहीं हुआ है तो जीरो। और जिसे केवल अनुभव हो चुका है वो सर्वश्रेष्ठ है। एक दिखाते हैं ना भक्ति में, कोई एक महान संस्कृत का पंडित, प्रकांड पंडित, जो कि गीता पर प्रवचन करने वाला होता है, वो एक बार जाते रहता है तो उसे एक दिखता है एक अनपढ़ गवार व्यक्ति बैठा हुआ है, सामने चित्र है एक श्री कृष्ण का रथ पर बैठे हुए, अर्जुन पीछे है, और वो चित्र को देख कर ही रो रहा है। तो उसे लगता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तो कहता है मैं गीता सुन रहा हूँ। बोले तुमको कहाँ है गीता, सुनाई तो कुछ आ नहीं रही है। बोले चित्र में है ना, श्री कृष्ण है सामने और पीछे अर्जुन है, और वो गीता सुना रहा है, ये देखकर मैं रो रहा हूँ। उसे आंसू अनायास ही आंसू आ रहे, केवल देखने मात्र से इतना भक्ति है अंदर। और जबकि चाहे कोई कितना भी बड़ा पंडित हो, वो सूखा पंडित है, उसको अनुभव नहीं हुआ है, प्रवचन तो कर रहे है परमात्मा प्रेम पर, परंतु परमात्मा प्रेम का अनुभव ऐसी चीज है जो, इसके लिए बाबा को प्यार किससे, भोली भोली माताओं से। हाँ, बाबा ने कहा है वो अभ्यास के लिए कहते हैं, वो अभ्यास तो बन गए पर अभ्यास करो अभी, इस तरह से कहते हैं। तो अध्यात्म में सबसे ज्यादा महत्व किसके पास कितना ज्ञान है उसका नहीं है, कौन कितना निरंकारी है, किसने कितनी अनुभूति की है, परमात्मा स्नेह की, परमात्मा प्यार की अनुभूति, परमात्मा मदद की अनुभूति। क्योंकि ज्ञान बढ़ता है तो अहंकार भी बढ़ता है, सूक्ष्म रूप से माया आने लगती है, ये मैं जो है मैं कहां बैठा है समझ में नहीं आता है, मैं है वो बढ़ते जाता है, जासूस लगाने पड़ेंगे ढूंढने के लिए इस मैं को, किस कोने में बैठा है ढूंढना पड़ेगा उसको। क्योंकि जैसे जैसे अध्यात्म में आत्मा ऊंची उड़ती जाती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बल से उसको बहुत सफलता भी मिलती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य को पालन कर रही है आत्मा, काम विकार को जीत लिया है, जीत कर आगे बढ़ रही है, इसके लिए सफलता सहज मिलती है, और परमात्मा कार्य चल रहा है इसके लिए सफलता तो और ही मिलती है। और जैसे जैसे सफलता मिलती है, कीर्ति मिलती है, प्रशंसा मिलती है, तो वहां फिर अहंकार भी आने लगता है सूक्ष्म रूप से। वो अहंकार को ढूंढना ये बहुत ऊंची बात है। इसके लिए बाबा ने क्या कहा है, ब्रह्मा बाप नंबर वन क्यों गया, क्योंकि निरंकारी था, मैंपन को हटाने में नंबर वन, मैंपन को मिटाने में नंबर वन था, इसके लिए वो नंबर वन। नहीं तो प्राय देखा जाता है जैसे ज्ञान बढ़ते जाता है, पद मिलते जाता है, अध्यात्म में उन्नति होती जाती है, सफलताएं मिलती जाती है, क्योंकि परमात्मा कार्य है और ब्रह्मचर्य की शक्ति है आत्माओं में, पवित्रता का बल है, उसके वजह से सहज सफलता मिलती है हर क्षेत्र में। हजारों आत्माएं एक आत्मा के वजह से ज्ञान में चल पड़ती है, पर साथ साथ चेकिंग कौन सी चाहिए, उस सूक्ष्म अहंकार की, उस सूक्ष्म मैं की। वो मैं अंदर कहीं ना कहीं बैठा रहता है, उसको ढूंढना है कहां है वो मैं। आज मैं एक कहानी पढ़ रहा था ब्रह्मा बाबा की, ब्रजेंद्रा दादी का अनुभव, उसमें उन्होंने लिखा है, नहीं ब्रजेंद्रा दादी का नहीं, जशोदा, जशोदा का, उनकी लौकिक पत्नी, लौकिक पत्नी। उसने कहा कि एक बार जशोदा की सौतेली माँ, स्टेप मदर, घर आई थी उनके, जीवन कहानी में भी लिखा हुआ है ये, सौतेली माँ उनके घर आई थी, तो वो बैठे थे तो बाबा ने ऐसे ही कह दिया कि आपकी स्टेप मदर या सौतेली माँ आई हुई है। और उनको वो तो चली गई आके बैठकर, पर रात को उनको इस बात का इतना फील हुआ कि मैंने ये क्या कह दिया। भले वो सौतेली माँ है पर किसी को ऐसा थोड़ी कहना चाहिए स्टेप मदर आई है। तो उस दिन उन्होंने दूध नहीं पिया, फिर वो भोजन भी नहीं किया और सुबह सुबह उठकर वो दोनों वापस उसके घर गए और उससे माफी मांगने लगे। तो उसने कहा क्या बात है, क्यों माफी मांग रहे हो? तो फिर यशोदा ने कहा कि बता दो साफ साफ क्यों माफी मांग रहे हो, ये तो नहीं तो अगर माफी आपने इनको अगर माफ नहीं किया तो ये तो और खाना ही नहीं खाएंगे। तो उसने उसको बताया कि कल जब आप आए थे तो मैंने आपको सौतेली माँ स्टेप मदर कहा, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो उसकी जो सौतेली माँ थी उसने कहा हाँ वैसे स्टेप मदर या सौतेली माँ कहना तो खराब है ना, नहीं कहना चाहिए। उसको खराब लगा ही था क्या, उसने पूछा भी क्या मैं आपसे व्यवहार ठीक नहीं करती। तो फिर बाबा को तो और बुरा लगा, ये बात है अज्ञान काल की, जबकि बाबा का पुरुषार्थ भक्ति काल में ही ये चालू हो गया था, निरंकारिता का या स्वयं की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढने का। तो उसको इतना वहां फील हो गया, जबकि सिंधी वह प्रांत है, सिंध वह प्रांत है जहां पर कुशब्दों का प्रयोग बहुत सहज किया जाता है और बात बात में किया जाता है, एक दूसरे को बिना गाली दिए बात किया नहीं जाता, करते नहीं वो लोग उनका वो प्रदेश ऐसा है कि परंतु उस प्रदेश में जन्मा यह व्यक्ति तो वो उस सिंधी में बहुत सारे इस तरह के कु अपशब्द है एक दूसरे से बोलते है। उनमें इस व्यक्ति की यह विशेषता थी कि उसमें इतना अपने आप को चेकिंग तभी से करना चालू कर दी थी कि एक शब्द उसमें कोई कुशब्द भी नहीं था, फिर भी उसे इतना बुरा लगा। तो बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है अनुभव की। तो अध्यात्म में अनुभव, परमात्मा प्रेम का, हर बात का, आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, हर चीज का अनुभव बहुत आवश्यक है। बिना अनुभव के अध्यात्म की यह इमारत मंजिल ये खड़ी नहीं रह सकती। तो आगे फॉरेन में कितनी माला तैयार की है, 108 की माला तैयार की है या 16108 की? तो डबल फॉरेनर्स की अलग 108 की माला बनेंगी या मिक्स में आएंगे? अलग तो नहीं है ना, तो सभी 108 में होंगे। तो इंडिया वाले कौन सी माला में आएंगे? सभी एक में ही आएंगे। किसी ने कहा हिम्मत अच्छी रखते हो आए हो और आगे ही हिम्मत और आगे भी हिम्मत सदा बढ़ती रहेगी। अभी कंफ्यूज होंगे तो माया तो नहीं आती है ना, कंफ्यूज तो नहीं होते, कभी कभी कंफ्यूज करती है, मूड चेंज तो नहीं होती। तो इस वर्ष में कोई कंफ्यूज होना और न कभी कभी कंफ्यूज होना और न ही कभी किसी बात से मूड चेंज करना, सदा हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप भी सदा हर्षित और किस चीज का बैलेंस था, हर्षित और गंभीर, दोनों के बैलेंस की एक स्थिति में रहे, तो फॉलो फादर। और कोई माया तो नहीं आती, सदा अपने को विजयी अर्थात मायाजित अनुभव करते उड़ते चलो। तो सभी मायाजित तो हो ना, संकल्प में भी माया नहीं आती, वेस्ट थॉट्स के रूप में आती है। बाबा पूछ रहे व्यर्थ संकल्प के रूप में माया आती है? तो मायाजित का टाइटल मिल गया कि लेना है, सेरेमनी हो गई या सेरेमनी नहीं हुई है, फरिश्ता की ड्रेस पहन ली है, मिल गई है, जैसे दादी को डॉक्टरेट की ड्रेस मिली है ऐसे ही आपको भी फरिश्ते की ड्रेस मिल गई है। फिर व्यर्थ संकल्प कहां से आए? तो फरिश्ते को वेस्ट थॉट्स आते हैं क्या? फरिश्ता अर्थात व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थातीत, व्यर्थ से भी ऊपर, साधारण अतीत, साधारण से भी ऊपर, विकल्पा जीत, कोई विकल्प नहीं, विकल्प भी समाप्त हो गए, केवल श्रेष्ठ संकल्प। तो अभी वेस्ट को, वेस्ट का नाम निशान खत्म कर दो। क्या कर दो? नाम निशान खत्म करने के लिए पहले जानना होगा वेस्ट क्या है, व्यर्थ कहाँ कहाँ जीवन में समाया हुआ है। पहले तो हमको, हम ये स्वीकार ही नहीं कर रहे कि ये हमारा जीवन में ये व्यर्थ है। स्वयं को ढूंढना ये अध्यात्म, मैं कौन, बस यही है खोज। तुरंत उत्तर पे नहीं आ जाओ कि मैं आत्मा हूं, थोड़ा उसको ढूंढो और, क्योंकि बाबा ने कह दिया किताब में पढ़ा है मैं आत्मा हूं, तुरंत नहीं, इतना जल्दी इस लक्ष्य इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचो कि मैं आत्मा हूं, थोड़ा ढूंढो मैं हूं कौन, सारे दिन भर में मैं हूं कौन, मैं के कितने रूप है, बहुमुखी है। सुबह वो जो था वो भी मैं ही था जो अमृत वेले योग का अनुभव कर रहा है, दिन भर में मैं आ रहा है वो भी मैं ही हूं। सारा पुरुषार्थ स्वयं को ढूंढने का है। तुरंत नहीं इस निष्कर्ष पर पहुंच जाओ कि मैं ये हूं। जितना सूक्ष्म चेकिंग होती जाएगी उतनी ही हमारी उन्नति होगी, जितनी मोटे रूप से चेकिंग है तो उन्नति नहीं। हमारी सारी दिनचर्या ही मैं की दिनचर्या है जिसमें केवल मैं ही समाया हुआ है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, हमारी सृष्टि ही मैं की सृष्टि है। आत्मा वाले मैं की नहीं, देहभान वाले मैं की। हम जो सेवा समाचार भी सुना रहे हैं वो सेवा समाचार मैं का समाचार है। उसमें मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये केवल कहने मात्र नहीं है, निमित्त मात्र बाबा करा रहा है, ट्रस्टी निरंकारिता। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बार बार कहा है कि वो नंबर वन क्यों गया, क्योंकि मैंपन को मिटाया। तो ये जब मैं खत्म होता है तब ऑटोमेटिकली सब कुछ खत्म होता है। अध्यात्म वहां सब सर्वोच्च अवस्था है उसकी। तो सारे दिन भर ये ढूंढना है मैं कहां है, क्योंकि जहां मैं है वहां व्यर्थ है। जहां हाँ जी है, एक मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर कहा है, जब तुम हाँ कह देते हो तो सब वहां समाप्त हो जाता है, जब नहीं कहते हो तो वहां से तो प्रश्न शुरू होते हैं। फिर हमको किसी ने कुछ कहा ये करो तो, और हमने नहीं कहा, वहां वो पूर्ण विराम नहीं लगता, नहीं तो शुरुआत है फिर व्यर्थ की, संकल्पों की, विकल्पों की। हाँ कह दिया, मान लिया, खत्म बात। पर नहीं अगर कहा, हम नहीं मानते किसी चीज को, या स्वीकार नहीं है हमको, कोई नास्तिक भी कहते हैं बाबा, या स्वीकार नहीं की, तो वहां से व्यर्थ चालू होता है। तो हमारी चेकिंग सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती है। ढूंढना है स्वयं को, कहां कहां व्यर्थ आ रहा है, कहां कहां। सबसे पहले तो एक है साधारण, बाबा ने तो उससे भी मुक्त करने को, मुक्त होने को कहा है साधारण के भी, और है फिर है व्यर्थ। व्यर्थ की स्पीड ज्यादा है, व्यर्थ से भी निगेटिव की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, और निगेटिव से भी सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, एक है साधारण, साधारण से भी मुक्त होना है, उसके बाद है व्यर्थ, व्यर्थ से भी मुक्त होना है, व्यर्थ से भी ज्यादा स्पीड निगेटिव की, निगेटिव से ज्यादा स्पीड काम विकारों की है, विकारों में भी सबसे ज्यादा स्पीड काम की है। क्रोध को भी व्यक्ति रोक लेगा, मोह को रोक लेगा, क्रोध को रोक लेगा, पर जब काम उत्पन्न होता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल है। सब कुछ छोड़कर आत्मा तृप्त करेगी काम वासना को, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, फास्टेस्ट काम विकार इतनी उसकी ज्यादा स्पीड है। तो हमको एक तो विकारों को तो छोड़ दिया, उसके बाद लक्ष्य है निगेटिव नकारात्मक विचार, क्योंकि उनकी स्पीड, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उसको भी रोक लिया। उसके बाद बचता है व्यर्थ, व्यर्थ बहुत सूक्ष्म है। अब जिसने निगेटिव को ही नहीं रोका वो व्यर्थ को क्या रोकेगा, पहले तो जिसने विकारों को नहीं जीता वो ये सबको क्या जीतेगा। विकार कम से कम होने लगे धीरे धीरे, फिर निगेटिव समाप्त तो होने लगे ऑलमोस्ट, फिर व्यर्थ कहाँ कहाँ बचा है वो ढूंढना है। व्यर्थ भी जब चला जाता है तो बचता है फिर साधारणता। वो तो बाबा ने कहा साधारण संकल्प भी अपवित्रता है, पवित्रता की परिभाषा बाबा की, उस साधारणता से भी मुक्त। तो हमारे संकल्प तेज गति से चल रहे हैं, उनको धीरे धीरे कम करना है, साधारणता को सीधा श्रेष्ठ में परिवर्तन करना है। हर संकल्प की चेकिंग बाबा ने कहा है। तो अभी वेस्ट का नाम निशान खत्म कर देना है, ये टारगेट है। व्यर्थ से मुक्त होना एक्चुअली कर्मातीत की परिभाषा है, संपूर्णता का ही लक्षण है। व्यर्थ से मुक्त अर्थात संपूर्ण। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख हर्षित होते हैं, सिर्फ सदा शब्द को बार बार अंडरलाइन लगाते रहना। जो भी श्रीमत है, जो भी श्रेष्ठ है, उसको सदा करते रहना, ताकि वो संस्कार बन जाए, सबकॉन्शियस अंतर मन में जाकर वो बैठ जाए, आदत बन जाए एक श्रेष्ठ संस्कार। तब तक उसको करते रहना है, करते ही रहना है। तो यह कौन सा ग्रुप है? फरिश्ता ग्रुप, डबल फॉरेनर ग्रुप नहीं, फरिश्ता ग्रुप। अच्छा, जैसे संकल्प किया है वैसे सदा स्वयं भी फरिश्ता बन उड़ते रहना और औरों को भी फरिश्ता बनाते उड़ाते रहना। तो बाबा ने यहाँ पर तीन बातें कही है। सबसे पहले तो साथ का अनुभव, सदा साथ का अनुभव करना और उससे क्या क्या प्राप्ति होती है वो देखना। अच्छा, उसका साथ छोड़ने के बाद क्या क्या नुकसान होता है, क्योंकि हर एक को यह भी अनुभव है कि हमने बाबा को कहाँ कहाँ छोड़ा जीवन में, उसके ऊपर भी चिंतन करो कि जब जब हमने बाप को छोड़ा तब तक क्या क्या हो गया। कोई भी चीज अपने आप पर थोपनी नहीं, हर एक चीज को सोच समझ कर ही करना है। केवल नियम बने हुए हैं इसके लिए फॉलो करना, वो नहीं होगा। हर एक बात को गहराई से सोच कर कि मैंने ये टाइम पर बाबा को छोड़ा था तो ये हो गया, अपने आप को बैठकर समझाना है क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या फायदे है, साथ रखने के फायदे, छोड़ने के नुकसान, ये सोचने के बाद फिर फाइनल निर्णय करना। तुरंत व्रत नहीं ले लेना है कोई भी, कोई प्रतिज्ञा तुरंत, कल से वेस्ट समाप्त। आज अव्यक्त, 18 जनवरी को बाबा की अव्यक्त वाणी चली, वेस्ट थॉट्स खत्म, उसी दिन बाबा के सामने संकल्प किया आज से व्यर्थ समाप्त। अभी विकार ही इतने सारे भरे पड़े हैं, अभी निगेटिव इतना सारा है और व्यर्थ कहां से समाप्त होगा। तो जो संकल्प सुबह किया वो शाम तक खत्म। बहने संकल्प करती आज से रोना बंद बाबा के सामने, और उसी दिन ऐसी बात आती है कि आंखों से अविरल धारा बहने लगती है उसी दिन, क्योंकि सोच समझ के नहीं किया है संकल्प। कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी व्रत, कोई भी नियम, ऐसे ही नियमी व्रति नहीं बन जाओ, सोच समझ के करना है उसको, तो ही वो होगा। और जब सोच समझ के किया जाता है तो इस तरह की प्रतिज्ञा और इस तरह के व्रत और इस तरह के नियम स्वतः ही हो जाते हैं। वो समझदारी ही नियम है, वो उसको सोचना नहीं। आप ऐसे संकल्प करते हो कि मैं आज से दीवार से नहीं जाऊंगा, दरवाजे से जाऊंगा, ऐसे संकल्प करते हो क्या? आज से मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, यज्ञ में जो मिलता है वही खाऊंगा, ये संकल्प कोई करता है? कोई ऐसा नियम, कोई संकल्प करने की जरूरत ही नहीं। आप दीवार से जाते ही नहीं हो, आप दरवाजे से जाते हो। वो समझ लिया है उस बात को, वहां पर फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इस समझ को इतना बढ़ा दो कि दीवार से ही जाना है, दीवार से नहीं जाना है, दरवाजे से ही जाना है,
दीवार रास्ता दे देगी।
ये जब समझ आ जाएगी तो ये जो व्यर्थ है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, कुछ करने वो फिर संकल्प से आप कर सकते हो। वो आप संकल्प से कुछ भी कर सकते हो, वो तो आप पर्वत को भी कहो कि उठो और उठ के जा, समंदर में गिर तो वो तुम्हारी बात मानेगा, बाइबल में लिखा है। परंतु फिर तुम्हारे मन में एक भी संशय नहीं होना चाहिए, इतना पावरफुल संकल्प होना चाहिए तो होगा, वो तो आत्म विल पावर की बात है। तो ये जो भी हम नियम करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, जो भी अपने लिए प्लान बनाते हैं, वो प्रैक्टिकल प्लान चाहिए या समझ कर करनी चाहिए? ऐसे ही नहीं जोश में आकर बाबा के सामने आज से व्यर्थ समाप्त, बस अभी 10 दिन में कर्मातीत या संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में रहेंगे या लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये इस तरह के संकल्पों का कोई अर्थ नहीं। समझना है उसको, इतना समझना, इतना समझना, इतना समझना है, अपने ज्ञान को इतना बढ़ाना है कि वो सहज हो गया है। नहीं तो संकल्प करोगे कल से मैं 2 बजे उठूंगा और 2 बजे उठ के योग करेंगे और बाबा अपने चार्ट को 8 घंटा कर देंगे, सारे ग्रुप में संगठन में प्रतिज्ञा कर ली, 3 दिन 2 बजे और चौथे दिन सीधा 8 बजे नींद खुली,
2 बजे दिन के 2 बजे।
ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना, ये कोई एक दिन का या 2 दिन का या 1 महीने का या 1 हफ्ते का या 1 साल का पुरुषार्थ नहीं है, ये लाइफ है, जीवन है, ये कोई क्रिया नहीं है, ये स्थिति है स्वतः ऐसा। इसके लिए समझ को बढ़ाना है, तो वो समझदारी ही नियम है, वो समझदारी ही पुरुषार्थ है, समझदारी व्रत है और समझदारी सब कुछ है। इतना उसको समझाना है, अपने मन को समझाना है। तो विकारों से मुक्त, निगेटिव से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त, तो साधारणता से स्वतः ही फिर धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। ये सभी चीजों से मुक्त करने, विकारों में भी फिर पांच, फिर एक 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 कहां कहां क्या क्या आता है, मैं कहां आता है। अगर हर एक अपने आप को ढूंढे तो हमको लगेगा सारे दिन भर तो मैं ही खेल रहा है, बस आत्मा वाला नहीं, मैं आत्मा हूं नहीं, देहभान वाला मैं ये हूं। हम 20 साल से है यहाँ पर, हम 30 साल से है यहाँ पर, हम बहुत पुराने हैं, ये अंदर छिपा बैठा है, कहाँ है वो दिखाई नहीं देता है, पर है। रूप बदलता है, अलग अलग रूप, उसके इतने रूप है कि कहाँ उसके समझ में नहीं आता है। षड्यंत्रकारी है, इसके लिए कहाँ जासूस लगाने पड़ेंगे इस मैं को ढूंढने के लिए, पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है मन में। वो तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति एक कंदील लेकर एक कुटिया में अंधकार है, वो सोचता है चलो ये कंदील इसको लेकर उसको अंदर ढूंढते, लालटेन लैंटर्न, अंदर जाते हैं तो देखता है ही नहीं वो अंधेरा, कहाँ है अंधेरा, अंधेरे को ढूंढने निकले थे, पर जब बाहर निकले तो पता चला वो है, अंदर गए तो दिखाई नहीं कहाँ है। क्योंकि जब हम ढूंढने लगते हैं तब हम ज्ञान की अवस्था में है, उसका अस्तित्व एक्चुअली है ही नहीं उस मैं का, वो झूठा मैं है, पर हमको लग रहा है वो है। परंतु जब हम ज्ञान युक्त अवस्था में तो वो स्वतः ही समाप्त हो गया, क्योंकि वो अंधकार है, और अंधकार की परिभाषा है प्रकाश का अभाव। जहां प्रकाश है ही नहीं उस स्थिति को अंधकार, वो कोई व्यक्ति नहीं है, उससे हमको लड़ना नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट है वो। अगर हम सोचे कि इस अंधकार को निकालते हैं इस दरवाजे से तो पूर्णिमा बहन क्या हो जाएगा इस कमरे में, लड़ाई करके हम अक्षयोनी सेना लेके जाए अंधकार के विरुद्ध, कि इसको इस आज कमरे से निकालना ही है, 1000 साल से बैठा है कमरे में। तो हमारे जाते ही हम जब ये सोच जो हमारी है कि मुझे मैं को ढूंढना है, व्यर्थ को ढूंढना है, ये संकल्प ही इस व्यर्थ को खत्म कर देगा, क्योंकि व्यर्थ भी अंधकार ही है। केवल ये संकल्प, केवल ये ढूंढना, केवल ये समझ ही उसको समाप्त कर देगा। इसके लिए कुछ भी अपने आप पर थोपना नहीं है, और फिर अपराध बोध होता है, मैंने अमृत वेला मिस कर दिया, मैंने मुरली मिस कर दी, मैंने ट्रैफिक कंट्रोल मिस कर दिया, बाबा ने तो कहा है सदा हर्षित रहो, मैं हर्षित नहीं रहा। ये निरंतर आत्मा अपराध बोध से पीड़ित रहती है, बड़ा भारीपन रहता है, खेद रहता है अंदर, बाबा जो कह रहा है वो मैं नहीं कर रहा। कुछ दिन पहले मुझे एक बहन का फोन आया, एक सेंटर की बहन का, 3 दिन पहले, जिस दिन मुरली चली ना, बहुत मीठा बोलो, फर्स्ट क्लास बोलो, तुम्हारे फिक्स्ड बोल होने चाहिए। उसने कहा मैं तो सारे दिन भर जो आता है उसको डांटती रहती हूँ, पर मुझे पुरुषार्थ बहुत करना है। क्या करूं अभी, बाबा जब ये जब जैसे बाबा के महावाक्य सुनते हैं एकदम हृदय उदास हो जाता है, और फिर बदल नहीं सकते, अपराध बोध, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली दिखावा है एक रीति से। इस दिखावा हम भीड़ को देखकर सब कुछ करते हैं, हमारा पुरुषार्थ भी है वो एक रीति से कुछ ना कुछ आडंबर है उसमें, कोई एक प्रकार से जिसको दिखावा ढोंग शो उस तरह से, जैसे दिखाते ना ट्रेन में, एक दिखाया एक कहानी साधु की, साधु बैठा हुआ है अभी खाली, वो लंगोटी पहना हुआ है और ध्यान रमाए बैठा है, जैसे देखता है किसी का भी ध्यान नहीं है, फटाफट अपने बाल वगैरह ठीक करता है, फिर देखता है कोई मुझे देखे ना तो वापस, जैसे देखता है कोई नहीं है उसकी फटाफट पोटली निकालता, पैसे कितना गिनता है, जैसे पैसे गिनना एक अपराध है, वो छुप के करना चाहता है इसको, क्योंकि साधुओं के लिए गिनना तो कौन क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, इसके लिए वापस छुपा देता है। जो साधु राख लगा के रहते हैं अपने शरीर में, वो भी एक छोटा सा आईना रखते है। तो हमारा पुरुषार्थ वो साधु संतों जैसा तो नहीं है, जो संसार में बाबा है, साधु गुरुडम है, वो दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या हम तो वैसा नहीं कर रहे कि दूसरे कहे कि तुम तो बहुत अच्छे योगी हो, तुम्हारा चिंतन बहुत अच्छा है, कोई ऐसा कहते तो बड़ी खुशी होती है, कोई कहते तुम्हारा तो बस, तुम तो जब देखो तब योग युक्त अवस्था में ही रहते हो, कितनी अच्छी खुशी मिलती है। अगर वो उनको हटा लिया जाए तो बाबा के कमरे में हम अकेले बैठे हैं और सबके साथ में बैठे हैं, सबके साथ में बैठे हैं तो थोड़ा और ज्यादा, वो अलग बात है पॉजिटिव साइड्स, पर यहाँ मैं कुछ और बात बोल रहा हूँ, दिखावा नहीं है। तो हमारा पुरुषार्थ खुद के लिए हो, कोई दिखावे के लिए नहीं, हमको किसी को दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है, हमारा सब कुछ स्व के लिए है, हम जो भी कर रहे हैं खुद के लिए। तो फिर बाबा ने ये अनुभव की आग के बारे में कहा और लास्ट में फॉलो फादर के बारे में कहा, बाबा का हर्षित और गंभीरता दोनों का जो बैलेंस था उसके बारे में कहा, और फरिश्ता अर्थात फेस थॉट से मुक्त, डबल लाइट, हल्का, व्यर्थ समाप्त, नाम निशान नहीं। अच्छा, ओम शांति।